छवि सिंघानिया फैज़ के पास आई हुई थी। उसे लगा फैज़ उसे कोई मैसेज देने वाला होगा जो आयु से रिलेटेड होगा, इसलिए छवि पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने साथ में जो अल्फाबेट्स ले रखे थे, फैज़ ने उसके ज़रिए उसे मैसेज दिया, जिसमें ये था कि आरव को मार डालो। जैसे ही छवि ने वो पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि फैज़ इस तरह का कोई ऑर्डर देगा। फैज़ को उस पर शक ना हो, इसलिए छवि ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए कहा, मारना? मारना क्यों चाहते हो आप उसे? मुझे लगा कि आप ये चाहते हो कि उसने आपके साथ जो भी किया, उसके बाद वो अपनी वाइफ को खुद से दूर होता देखे, तड़पे, लेकिन आप तो कुछ और ही सोच रहे हैं। फैज़ मुंह से कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन छवि के एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए उसने अपने मन में कहा, न जाने क्यों आपकी आंखों में हमें आरव के लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। आप भी तो उसे मारना चाहती थीं, फिर आज आपको इतना झटका क्यों लग रहा है? पहले हमने भी सोचा था कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ करेंगे, लेकिन सुबह उसने जो हरकत की, उसके बाद से हमें उन पर गुस्सा आ रहा है। हमारा बस चलता तो उसी पल उसकी जान ले लेते, पर अब आप ये काम हमारे लिए करेंगी। छवि फैज़ के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, तभी फैज़ ने हाँ में पलकें झपकाईं। इसका मतलब साफ था कि वो आरव को मारने के ऑर्डर्स दे रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं प्लान के साथ मिलती हूँ। मैं भी एक दो दिन के लिए बिज़ी रहने वाली हूँ तो आ नहीं पाऊँगी, छवि ने कहा। हालांकि उसे आज रात ही काम था, लेकिन वो दो के दिनों में फैज़ से इरिटेट हो गई थी। फैज़ ने जवाब में आइज़ रोल कर दी। उसके कहने का मतलब था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छवि उससे मिलने आती है या नहीं भी। फैज़ को बाय बोलकर छवि वहां से निकल गई। वो अपनी गाड़ी में थी और उसे इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। छवि ने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं आरव को क्यों मारूंगी? वो तो मेरा, बोलते हुए छवि रुक गई। फिर उसे याद आया कि एक बार गुस्से में उसने भी आरव को मारने की कोशिश की थी। छवि खुद को ही सफाई देते हुए बोली, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ डराना चाहती थी। उस वक्त उसे कुछ नहीं हुआ, मैं उसे क्यों मारूंगी? मैंने खुद उसे जन्म दिया है। अचानक ही छवि की आंखों में वो दिन घूमने लगा जब उसने आरव का चेहरा पहली बार देखा था। छवि उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी जब नर्स ने उसके हाथ में आरव को दिया था। छवि ने जब पहली बार उसे देखा था तो उसके फोरहेड को किस किया था। वो अपनी छोटी नीली आंखों से उसे देख रहा था। आरव को देखकर छवि ने सबसे पहले यही कहा था, तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसे लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें अपनी नानी जैसी है। माय लिटिल बेबी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी और तुम्हें दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाऊंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वैसे तो तुम काफी लकी चाइल्ड हो कि अनुराग खुराना के बेटे हो, वो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। पर आई प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, तुम्हें दर्द महसूस तक नहीं होने दूंगी। पुरानी बातें याद आने पर छवि को गिल्ट फील होने लगा। उसकी आंखें नम हो रही थी। उसने खुद से कहा, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया, आज उसी की जान लेनी पड़ रही है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनुराग। तुमने मेरे बेटे के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और आज एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। जो भी हो फैज़ खान, जान तो नहीं लेने दूंगी अपने बेटे की। उसे दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है, मैं अपना ये हक किसी को नहीं छीनने दूंगी। छवि ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को रिलैक्स करने लगी। उसे आरव को बचाने के प्लान भी बनाने थे, क्योंकि एक बार फैज़ ने डिसीजन ले लिया था तो वो ये काम किसी और से भी करवा सकता था। छवि अपनी गाड़ी में वहां से चली गई। वही आरव खुराना मेंशन पहुंचा। जब से अयान से उसकी बात हुई थी, उसे आयु की एक्स्ट्रा ही फिकर हो रही थी। घर आते ही आरव सीधा अपने कमरे में पहुंचा। उसने देखा आयु ने पैकिंग कर दी थी और उनके लगेज साइट में रखे हुए थे। आयु बेड पर बैठकर अपना मोबाइल स्क्रोल कर रही थी। आरव जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आरव की इस हरकत पर आयु ने हैरानी से कहा, तुम मुझसे 3 घंटे पहले ही मिले थे और ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे 3 दिन हो गए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? आरव ने जवाब दिया। बोलते हुए वो आयु से अलग हो गया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आयु ने आइज रोल की और सिर हिलाकर जवाब में कहा, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कॉल पर बताया तो था कि मैंने मेडिसिन ले ली है। न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम मुझे भूलने ही कहाँ देती हो कि तुम एक डॉक्टर हो। मैं हॉस्पिटल गया था और मैंने तुम्हारी लीव की बात कर ली है, आरव ने बात को टालने के लिए कहा। वहीं उसके हॉस्पिटल जाने की बात सुनकर आयु कुछ कुछ समझ गई थी। उसने आरव की आंखों में देखकर पूछा, तुम मेरी अननेसेसरी केयर कर रहे हो तो जरूर अयान से मिले होंगे। उसने कुछ कहा तुमसे या मेरी मेडिकल कंडीशन को लेकर? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब जानता हूँ। शादी होते ही मैंने उसे सारी रिपोर्ट्स मंगवा ली थी और सब कुछ समझ लिया था। एक पल के लिए भूल गया था, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा, आरव ने जवाब दिया और फिर से आयु को अपने सीने से लगाते हुए कहा, प्लीज मुझसे दूर मत रहो। जब भी तुम ये कहते थे अच्छा लगता था, लेकिन सुबह के बाद से अब तो मुझे डर लगने लगा है। सुबह भी तुमने मुझे ऐसे ही बातों के जाल में फंसाया था, आयु ने सार्कास्टिक लय में कहा। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर रह गया। वो आयू को कुछ देर तक अपने सीने से लगाकर खड़ा रहा। शाम के लगभग 7 बजे के करीब गौरवी जी और कबीर को बाय बोलकर आरव और आयू दुबई के लिए रवाना हो चुके थे। हालांकि आरव जानता था कि वो आयू को मौत के मुंह में लेकर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था कि वो आयू को हर खतरे से बचा लेगा। जैसे ही उन लोगों ने दुबई की फ्लाइट ली, एक आदमी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एरिया से बाहर निकल कर आया। वो उनका पीछा कर रहा था न जाने कब से। उनके दुबई से निकलते ही वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में फैज़ के रूम में पहुंचा। उस आदमी को देखते ही फैज़ की आंखों में चमक थी। वो उसका मैनेजर अब्बास था। वहां आते ही उसने फैज़ से धीरे से कहा, मुझे आपको इस हालत में देखकर सबसे ज्यादा दुख हो रहा है और मैं अच्छे से जानता हूं ये किसने किया है। चाहूं तो उससे आज ही बदला ले सकता हूं, लेकिन आपके ठीक होने का वेट कर रहा हूं। मैं आरव खुराना का पीछा कर रहा था। यहां नहीं आता पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने के लिए यहां आना पड़ा। वो अपनी वाइफ को लेकर दुबई गया है। आरव खुराना के दुबई जाने की बात सुनकर फैज़ की आंखों में भी हैरानी के भाव थे। अब्बास ने उसकी बातों का जवाब देते हुए आगे कहा, हाँ जानता हूँ आपको हैरानी हो रही है, मुझे भी हुई थी। आरव खुराना उस लड़की को दुबई क्यों लेकर गया है? वहां तो उसकी जान के इतने दुश्मन हैं, जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या आप श्योर हो कि वो उस लड़की से प्यार करता है? अगर ऐसा होता तो वो उसे लेकर दुबई नहीं जाता। अब्बास की बातें सुनकर अब फैज़ भी कन्फ्यूज हो गया था। वो किसी को भी एक नज़र में पहचान लेता था, जबकि आरव से तो वो कई बार मिल चुका था। इतनी बार मिलने के बाद भी उसे आरव के बारे में कुछ समझ नहीं आया था।
फैज़ ने आंखों के जरिए कोई इशारा नहीं किया तो अब्बास बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं? वैसे भी उसने जो किया है उसके बाद वो ये डिजर्व करता है। अब्बास के पूछते ही फैज़ ने हाँ में पलके झपका दी। पिछले 3 दिनों से ही वो आंखों के इशारों से अपनी बातें समझा कर परेशान हो गया था। न जाने उसे कब तक ऐसे ही जिंदगी बितानी होगी, और ये सब आरव की वजह से हुआ था। अब्बास ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है, उसके दुबई से आते ही आपका काम हो जाएगा। बिताने दीजिए उसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उस लड़की के साथ। चाहता तो मैं उस लड़की को भी मारना हूं, लेकिन आपकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। अब्बास के दिल में जो भी था उसने बता दिया, ये जानते हुए भी कि फैज़ आयू को पसंद करता है। फैज़ ने आंखों के इशारे से अब्बास को बाहर जाने के लिए कहा। उसे अब्बास की बात पसंद नहीं आई थी। अब्बास के बाहर जाते ही फैज़ ने अपने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में आरव खुराना? आप अपनी पत्नी को खुद मौत के मुंह में क्यों लेकर गए हैं? अगर गलती से भी उसे हमारे आदमियों ने देख लिया तो उसकी जान पर बनाएगी, और जहां तक हम जानते हैं उससे शादी करने के बाद नहर लूथरा के साथ आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं। आप उन्हें वहां लेकर जाएंगे तो उसके आदमी उन्हें मार देंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि अगर हम ठीक होते तो सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी का सोचते। फैज़ हॉस्पिटल के बेड पर लेटा आरव के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरव आयू के साथ दुबई पहुंच चुका था। वहां आते ही उन्होंने होटल में चेक इन किया। अगले दिन उनकी नहर लूथरा के साथ मीटिंग थी। आरव ने अब तक आयू को दुबई आने का कारण नहीं बताया था। वहां आने के बाद डिनर करने के बाद जब वो दोनों अपने रिलैक्स करने के लिए अपने रूम में आए, तब आरव ने आयू से कहा, झटका लगे या मुझसे नफरत भी हो, बाकी लोगों की तरह तुम भी मुझे सनकी या पागल समझो, लेकिन मैंने जो किया है उसके पीछे एक कारण है। बोलते हुए आरव का चेहरा सीरियस था। इससे आयू समझ गई कि बात सच में गंभीर है। हाँ, तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस बुरे नहीं होते। जब तुमने अचानक यहाँ आने का कहा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम किसी और काम से आए हो। अब पहेलियाँ मत पूछाओ और सीधे सीधे सब कुछ बता दो, आयू ने जवाब में कहा। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहर लूथरा से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। नहर लूथरा माहिरा लूथरा का बाप है। वहाँ ले जाने से पहले ही बता देता हूँ कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा है, लेकिन जो भी हो मुझे तुम्हारे साथ उससे मिलना जरूरी है। जैसे ही आरव ने ये बताया कि नहर लूथरा आयू को मारना चाहता है, आयू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने आरव को मारते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जानबूझकर मुझे मौत के मुंह में लेकर आए हो और फिर बोलते हो कि मेरे डिसीजंस पर सवाल खड़े मत करना? हाँ, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए एक बार मौत के मुंह में ले जाना भी जरूरी है, आरव ने ईविल स्माइल करते हुए जवाब दिया और फिर आयू को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। हर बार की तरह आरव ने आयू को आधी अधूरी बात बताई थी। वो आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले आरव उसे चुप करने के लिए उसे किस करने लगा। हर किसी की तरह आयू के दिल में भी यही सवाल उठ रहा था कि आरव आखिर सब कुछ जानते हुए भी उसे मौत के मुंह में क्यों लेकर आया है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।